اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قیام سے قیام تک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کریں گے آل زبیر اور آل مروان کی حکومتوں کے سلسلے میں، کہ ان کے آپس میں کیا اختلافات تھے، کون سی چیزیں ایسی تھیں جو ان کے درمیان مشترک تھیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا نجیب الحسن صاحب۔ آئیے اپنے موضوع پر سوالات کرتے ہیں مولانا نجیب الحسن صاحب سے۔ السلام علیکم مولانا۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولانا، کون سی ایسی چیزیں مشترک نظر آتی ہیں ہمیں آل زبیر اور آل مروان میں؟ اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سا اگر تھوڑی سی تاریخ بیان کر دیں کہ یہ آل زبیر تھے کون، آل مروان کون تھے، بنو امیہ سے ان کا کیا رب تھا، یا بنو عباس، یا کون سی حکومت کس زمانے میں تھی، کہ ایک اجمالی خاکہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں پیدا ہو جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ پہلے تو ہم ایک جائزہ لیتے ہیں ابتداءً کہ آل زبیر کون تھے اور آل مروان
کون تھے۔ جی بالکل،
دیکھیں، آل زبیر کا تعلق زبیر بن عوام سے ہے، اور عبداللہ بن زبیر، یعنی عبداللہ بن زبیر چونکہ بیٹا ہے زبیر بن عوام کا، اور صفیہ در حقیقت پھوپھی ہیں رسول اللہ کی، اور یہ بہن ہے زبیر کی، یہ رشتہ ہے ان لوگ کا آپس میں۔ اور عبداللہ ابن زبیر اس عنوان سے کہ ایک زبیری حکومت کا پہلا حاکم ہے اور پہلی مرتبہ حکومت اس کے ہاتھ میں آئی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اقتدار کی حوث رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہری طور پر بہت پارسا، بہت متقی، پرہیزگار، عابد شب زندہ دار کی حیثیت سے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ظاہری انداز میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑا پرہیزگار انسان ہے،
عابد زاہد آدمی،
لیکن یہی وہ شخص ہے کہ جس نے بارہا بارہا اپنے باپ کو بہکایا زبیر کو، اور مقابلے پر آئے، یعنی بار بار اس طرح سے کوشش کی کہ زبیر امام علی علیہ السلام کے مقابلے پر آئیں، جبکہ خود پہلے زبیر کو سیف الاسلام کہا جاتا تھا، امام علی علیہ السلام کا پورا ساتھ دیا تھا۔ تو ان کا جو نقطہ نظر تھا عبداللہ ابن زبیر کا، وہ یہ تھا کہ خاص طور پہ بہت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں بہت نفرت تھی، یہی چیز آل مروان کے اندر بھی ملتی ہے، یعنی آل مروان کے اندر بھی بالکل جس طرح سے عبداللہ ابن زبیر سے ایک پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے زبیریوں کا، کہ اصل میں یہ سب زبیر بن عوام سے اس کا تعلق ہے، چونکہ عبداللہ ابن زبیر زبیر کا بیٹا ہے، پھر مصعب بن زبیر عبداللہ ابن زبیر کا بھائی ہے، پھر منذر، یہ سب یعنی منذر دوسرا بھائی ہے کہ جو جب
یعنی حکومت حملہ کیا، میں چل رہی،
ہاں حکومت اس طرح سے چل رہی ہے۔ یہ زبیری خاندان، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن زبیر کے فکری خطوط کے اوپر چل رہے ہیں، جس کا کہنا یہ ہے کہ میں اس لیے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لینا چاہتا یا نہیں لکھنا چاہتا، کہ میں اگر ان کا نام لے کے آنا لاتا ہوں تو کچھ ان کے جو گھرانہ ہے، ان سے تو متعلق افراد ہیں، ان کا سر بلند ہو جاتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کا سر بلند ہو، یہ اس حد تک ہے اس کے اندر نفرت، میرا بس چلے تو زندہ زندہ ہر ایک بنی ہاشم کو جلا دوں۔ ادھر آل مروان کوئی فرق نہیں ہے، ہاں آل مروان کے سلسلے میں اگر یعنی عرض کیا جائے تو بہتر ہے کہ یہ کہاں سے آل مروان ہوئے، یعنی بنو امیہ ہیں، بنو امیہ میں جو اس میں ہوا یہ کہ یزید کے بعد، یعنی ابو سفیان سے جو سلسلہ شروع ہوا یزید تک پہنچا، معاویہ، معاویہ کے بعد یزید، اور اب یزید کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید بن ابی سفیان، یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان، تو یہ معاویہ ابن یزید تک جب پہنچا تو معاویہ نے حکومت کو ٹھکرا دیا کہ مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے، نہیں کرنا ہے۔ جب معاویہ نے، یزید کے بیٹے نے، کہ جو سلسلہ چل رہا ہے ابو سفیان سے، हुकूमत को ठुकरा दिया और वहाँ पर अब कोई नहीं है कि जो हुकूमत करे। ये सूरत हाल शाम की है कि अब कोई ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जितने बड़े लोग थे, ये सियासत थी माविया की, अमीर शाम की, जितने बड़े लोग थे उसको उसने पहले ही ठिकाने लगा दिया था यजीद की खिलाफत के सिलसिले में, कि यजीद को यानी
खलीफा
खलीफा
बनाना है।
बनाना था। यजीद को लाने के लिए उसने जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबको लाइन से लगा दिया था कि कोई नहीं रह जाए, एक जो भी हो तो सीधे सीधे लोगों की नज़रें यजीद के ऊपर जाएं। यजीद एक मस्त आदमी था, उसकी मस्ती की पूरी कहानी है कि एक मंजिल पर रूम से मुकाबले के लिए इसको सरदार बनाया था, एक कमांडर बनाया था एक टुकड़ी का। तो वहाँ पे उस वक्त ताऊन आ गया, जिसको प्लेग कहते हैं, ताऊन फैल गया। तो लोगों ने आके खबर दी कि यजीद, ये इसकी एक बीवी थी उम्मे कुलसूम, बनी उमैया से थी, खूबसूरत बीवी थी, उसके साथ में था। कहा कि वहाँ पे ताऊन से लोग मर रहे हैं। तो उसने कहा कि मर रहे हैं तो मरते रहो, क्या है, मैं तो अपनी जौजा उम्मे कुलसूम के साथ में हूँ। तो ताऊन आए ना आए, मेरे लिए तो यही ताऊन है कि यहाँ से हट जाऊँ मैं। तो ये इस तरह का इंसान था। लेकिन इस तरह का आदमी किस तरह से माविया कामयाब हुआ इसको लाने में? क्योंकि अतराफ में जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबको उसने किनारे कर दिया था। अब जब ये यानी सीधी सीधी हुकूमत मौरूसी हो चुकी थी, माविया ने, यजीद ने आके काम को उनके एतबार से ख़राब किया कि उसने कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे नहीं चाहिए। यहाँ से सिलसिला जाता है अब मरवान के पास, चूँकि मरवान हिजाज में था। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने मरवान को भगाया वहाँ से, चूँकि ये मनफूर शख्स था, रसूलुल्लाह ने इसको भगाया था,
जी,
जिला
शहर से
पसंद किया,
निकाला है,
शहर से
मदीने से।
निकाला
जी
था।
हाँ,
तो अब उसके बाद फिर इस अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर इन सब चीज़ों में थोड़ा सा सियासत रखता था कि ये मसलन रसूलुल्लाह ने इसको भगाया है, इसने भी इसको भगा दिया। मुहाजिरीन के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। ये पहुँच गया किसी तरीके से शाम। जब शाम में पहुँचा तो जाहिर है कि है तो एक ही सिलसिला, बनी उमैया से हैं सब। लेकिन यहाँ से ये सुफियानी सिलसिला मुनक़ता हो जाता है माविया अपने यजीद
यजीद के बाद।
के बाद।
जी
अब लोगों ने कहा कि भाई क्या किया जाए। तो ये हुआ कि सबसे बड़ा हमारे यहाँ मसलन मरवान है और समझदार भी है, इसको खलीफा बनाते हैं। तो सब ने आकर इसके ऊपर इत्तेफाक किया कि हम मरवान को खिलाफ। अब इसके बाद खिलाफत सुफियान से हट के मरवान के पास आई। अब मरवान के बाद फिर मरवान के बेटे हैं वलीद
अब्दुल
इब्न
मलिक
मतलब अब्दुल मलिक, ये
जी,
जितने भी अब्दुल मलिक हैं, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, वलीद इब्न अब्दुल मलिक, इनका सबका सिलसिला, सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक, इनका सबका सिलसिला है मरवान से।
मरवान से।
ये इनका इनका सिरा जुड़ रहा है मरवान से। और अब ये मरवान की दरहकीकत जो हुकूमत है बनी उमैया की, ये मरवान के ज़रिए से आगे बढ़ रही है। और ये इसलिए हुआ कि शाम के लोगों में ये बात थी कि जो भी हो, हुकूमत अगर होनी है,
हाँ, उनके अंदर दीनी बसीरत नहीं है
हाँ जो भी
कि
हो,
वो
अगर
किसी दीनी शख्सियत को पहचानने के काबिल हों कि ये खलीफा जो बने, इस्लाम की हुकूमत का जो सरबरा बने, उस वो किस तरह का होना चाहिए। बस उन्होंने और इस बारे में तहकीक भी नहीं की कि ये इसको तो रसूल ने मदीने से निकाला है।
नहीं तो वो इस सब वो ये समझते थे, बल्कि दूसरों को समझते ही नहीं थे। खुद एक मंजिल पर तमाम यानी बनी उमैया के अफराद जमा हुए और उन्होंने, अच्छे खासे लोग वहाँ पर जमा थे जो उनके बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने आके इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर हम किसी भी नस्बत को जानते हैं रसूलुल्लाह से तो सिर्फ अमीर शाम की नस्बत है। उनको पता ही नहीं था,
उनको
इसीलिए आप
किसी और
देखें
चीज़ के
कि
बारे में नहीं
अमीर
मालूम।
शाम ने खुद ख़त लिखा जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को, तो कहता है मेरे पास एक ऐसा लश्कर है जो न तुम्हें पहचानता है न तुम्हारे साबिकों को जानता है, इमाम अली से कहता है, न अम्मार और इस तरह के लोगों तो जानते ही नहीं है कि कौन है। उसको सिर्फ पता है कि अगर कोई रसूलुल्लाह का अजीज़ और रिश्तेदार है तो वो मैं हूँ, उसको ये मालूम, उन लोगों को ये पता है। और इस तरह से, और मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको तमीज़ नहीं है कि मादा ऊँट कौन है और मसलन नर ऊँट कौन सा है, नाका क्या है और मिसाल के तौर पर ऊँट कौन है। यानी इस मंजिल पर उसने फिक्री सदा को पहुंचाया था। इस जहालत ज़दा माहौल में उसने ऐसे तारों को बुन दिया था कि जिसमें सिर्फ उसी की हुकूमत चल सकती थी। लिहाजा वो लोग मजबूर थे कि किसी ना किसी ऐसे ही हाकिम को लेके आए माविया अपने यजीद के बाद, कि जो उनके सिलसिले को आगे बढ़ाए। और मरवान से बेहतर उनके लिए कोई नहीं था कि कि जो उनकी नज़र में ये था कि हमारी हुकूमत के सिलसिले को आगे बढ़ा सकता है, बनी उमैया की हुकूमत के सिलसिले को, कि जिसका ताल्लुक़ मसलन रसूल अल्लाह से है। ये उन लोग का ये सिलसिला इस तरह से मरवानी सिलसिला हुआ। अच्छा, फ़िक्र आले ज़ुबैर और मरवानियों की फ़िक्र में जो बुनियादी तीन चार चीज़ें हैं जो उनके अकायद में मिलती हैं, कोई फ़र्क नहीं था फ़िक्री एतबार से। अंदाज़ हुकूमत का अलग अलग था और इक़्तदार दोनों को चाहिए था, हुसूल इक़्तदार के लिए आगे आए थे। जमात, लुजूम जमात, इनका अकीदा था कि इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, सब एक होना चाहिए, और कोई अगर इख्तलाफ करता है तो उसका मतलब वो बागी है, फिर उसका अंजाम कत्ल है, वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए जो कि इख्तलाफ कर रहा है। जमात, लुजूम जमात का इनका अकीदा। दूसरा, इताअत खलीफा की, बेचूँ चरा, उसमें जो खलीफा की इताअत में जो इन्होंने जबर के अकीदे को शामिल कर दिया था, और ये था कि बहरहाल खलीफा जब अल्लाह ने इसको
अल्लाह ने
बना
बनाया
दिया है
उसको, इसमें
तो
हमारा
अब हमारा कोई इसमें
कोई
दखल नहीं।
किरदार नहीं है।
तीसरी चीज़ थी अहले बैत से तेज़ी या अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी, दोनों के अंदर पाई जाती थी।
दोनों के अंदर
इन लोग के यहाँ पर भी थी, मरवानियों के अंदर भी थी और आले ज़ुबैर के अंदर भी, दोनों इस पे
मुत्तफिक थे।
मुत्तफ़िक थे। तो ये इनके जो एतक़ादात इस तरह से थे ज़ाहरी, और
मुश्तरकात भी इसको हम कह सकते हैं कि
जी
मुश्तरकात है।
हाँ
अख्तलाफात पे वक्फे के बाद बात करते हैं। यहाँ पर नाज़रीन एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मौजूआत पर और हमारे सवालात पे गुफ्तगू करने के लिए मौलाना नजीबुल हसन साहब, मौलाना आले मरवान और आले ज़ुबैर के
जी
मुश्तरकात पे हमारी गुफ्तगू चल रही थी। तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी और
जमात की पैरवी,
जमात की पैरवी,
खलीफा की इताअत,
खलीफा की अतात,
ये इन
अकीदा
लोग
जबर,
अकीदा जबरी है ये।
इसके ऊपर ये साबित कदम सुबात नज़र आता है इन लोगों का। इख्तलाफात क्या नज़र आते हैं इन दो आले ज़ुबैर और आले मरवान में? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इख्तलाफात के साथ साथ थोड़ी सी अगर वजाहत कर दें कि इन दोनों
की हुकूमत
की
मसलन की
हुकूमत
जी
का टाइम पीरियड क्या रहा है, कितने अरसे तक इन दोनों ने हुकूमतें की हैं, और क्या ये ज़माना मुश्तरक है बनू उमैया की हुकूमत के साथ कि उधर बनू उमैया की मरकज़ी हुकूमत जारी है और बीच में आले ज़ुबैर ने हुकूमत की है, या नहीं उनकी हुकूमत का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है फिर इनकी हुकूमत है, क्या सिलसिला है? ये
जी
थोड़ी
नहीं
सी इस दौर में हमें
हम
एक खिचड़ी पकती हुई नज़र आती है खिलाफतों की,
जी
हुकूमतों की।
देखें, इनकी जो हुकूमत है माविया के बाद, अमीर शाम के बाद मुंतकिल होती है
आले
मरवान के
मरवान
ऊपर।
को जी
अच्छा, इधर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने पूरे यजीद की यानी खिलाफत के दौर ही में, जब एक वफद
मुखालफत
गया
की है
और
मक्के में।
हाँ वफद गया और आया और कहा कि यजीद मसलन शारबे खमर है, जुआ खेलता है और ये करता है वो करता है, सारी बातें जिसको इमाम हुसैन पहले से कह चुके थे। तो अब इसने देखा कि ये अच्छा मौका है हुकूमत के लिए, अब कोई है भी नहीं ऐसा, चूँकि और बुजुर्गान जो हैं मसलन यानी अब्दुलरहमान हैं वहाँ पर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुलरहमान और अब्दुल्ला इब्न उमर,
अब्दुल्ला इब्न उमर
हाँ
जी हाँ,
ये अफराद हैं, इस खलीफ़े अव्वल का बेटे हैं, खलीफ़े सानी के, और ख़ुद अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है। तो देखता है कि ये लोग को ज़्यादा इतना वो नहीं है और सियासत भी नहीं आती है, तो इसने अपना हुकूमत के पायों को मजबूत किया अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने। इसकी हुकूमत 12 साल तक रही है अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की हुकूमत, और इसी दरमियान शाम में हुकूमत रही। अब मसला यह है कि ये मरकज़ में है, मक्के में है, मदीने में है, अब हिजाज़ को अगर अपने हुकूमत में शामिल नहीं करते तो शाम में हुकूमत है। शाम का ये है कि ताज़ी ताज़ी हुकूमत थी जब खलीफ़े अव्वल ने एक इन्हीं के ख़ानदान से बनी उमैया के एक फ़र्द ज़ाहरा सुफियान था वो भी, उसको भेजा यजीद नबी सुफियान को, और उसके बाद फिर उसके इंतकाल के बाद माविया को खलीफ़े सानी ने वहाँ पर रवाना किया। फिर खलीफ़े सानी ने जब माविया को शाम में भेजा तो उसने अपने इख्तदार के पायों को मजबूत किया और फिर हुकूमत का सिलसिला जारी रहा। तो यहाँ पर तो इनकी हुकूमत है लेकिन हिजाज़ में नहीं है। अब दोनों के दरमियान जो मामला है वो इसका है कि हिजाज़ पर कब्ज़ा कैसे किया जाए। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हिजाज़ के क़लमरो से बाहर निकलना चाहता है और ये निकलना चाहते हैं शाम से बाहर, पूरे ममलिकत इस्लामी को अपने कलमरों में, अपने हकमियत में लेना चाहते हैं। मरवान की हुकूमत का, आले मरवान की जो पीरियड है वो ये कि ख़ुद मरवान बिन हकम की हुकूमत 6 से तकरीबन 9 महीने की है, जो इनके बुज़ुर्गों में से है। तकरीबन उसके बाद 65 हिजरी से लेके 86 तक अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हुकूमत की है, और 86 हिजरी से लेके अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हुकूमत की है 21 साल तक, और खिलाफत के बाद यानी अब्दुलरहमान की खिलाफत के बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक आया, उसने 10 साल हुकूमत की सन 86 से 96 तक। फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में ये हुआ कि मसलन यूरोप को फ़तह किया गया और स्पेन और पुर्तगाल को अपने कब्ज़े में लिया, और उन वहाँ पर यानी गया इस्लाम को इन लोगों ने इनके बगौर पहुँचाया। वलीद के बाद फिर सुलेमान है 96 से 99 तक। फिर सुलेमान ने उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, इसके लिए कहा जाता है कि कुछ बेहतर था इन लोगों में, उसको चचाज़ाद भाई था, उसको अपना जानशीन बनाया और फिर वो खलीफा बना। फिर उसके बाद फिर यजीद इब्न अब्दुल मलिक 105 में है, फिर हिशाम इब्न अब्दुल मलिक। ये एक ज़ाहरी खाका है इन लोग की हुकूमत का जो आले मरवान हैं। इन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफ है वो बुनियादी इख्तलाफ यही हुकूमत और इकतदार का है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अपना इकतदार को फैलाना चाहते थे, फैलाना चाहता था, और ये मरवानी ये सब सोच रहे थे कि हम अपने इकतदार के दायरे को वसीतर तर करें, और ये फिर यूरोप और पहुँचे भी यूरोप तक, इन्होंने अपने इकतदार को फैलाया। इन लोगों के दरमियान जो एक बुनियादी चीज़ है कि जिससे गफलत की आले ज़ुबैर ने, अगर वो अपने इकतदार को पहुँचा यानी चाहते कि मजबूत हो जाए, तो उनको यानी जो ज़ाहरी नुक्ता नज़र है उसके अतबार से, तारीखी तजिए के अतबार से, इनको उलझना नहीं चाहिए था मुख्तार से, चूँकि मुख्तार की फ़ौज ने मुख्तार इब्राहिम बिन मालिक अश्तर की सिपहसालारी में शामी फ़ौज को शिकस्त दी थी। तो एक यानी सियासी एतबार से भी ये अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की गलती थी कि अगर इनको उलझना ही था, और उनको मालूम था कि मरवानी आएंगे और मानने वाले नहीं हैं, इनको मालूम था कि बनी उमैया को इस कदर इख्तदार की हवस है, तो इनका जो पहला टारगेट होना चाहिए था वो बनी उमैया ही होने चाहिए थे, मुख्तार से नहीं उलझना। शायद यही वजह थी कि जब मुसब के पास अशस बिन कैसे किंदी गए या इस तरह के दूसरे अफराज गए, शब्स मसन गया, तो वो तैयार नहीं हो रहा था कि नहीं मैं मसन उलझना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब इन्होंने मुहल्लब बिन अबी सफरा को लेके आए तो फिर वो भी आगे बढ़ गया। शायद यही वजह थी कि मुसब मसन तेज़ था, समझ रहा था कि क्या है, हम इसमें उलझेंगे तो क्या होगा। नतीजा ये कि अगर मजमू एतबार से देखा जाए तो जो उस वक्त के हालात थे वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के साथ थे। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने अपने हालात को अपने खिलाफ़ किया मुख्तार से जंग करके, जबकि अगर मुख्तार से जंग ना होती और ये अपनी क़ुव्वत को इधर ना लगाकर फोकस उधर होता, तो शायद मरवानी हुकूमत इतनी ज़्यादा पायदारी नहीं हासिल होती। और उसकी पायदारी में जो बड़ा किरदार अदा किया वो हज्जाज जैसी शख्सियत ने अदा किया, कि हज्जाज को उसने हुकूमत दी, और हुकूमत देने के बाद हवाले करके एक शर्त उससे भी लगा दी कि आले अब्दुल मुत्तलिब से, आले अबी तालिब से नहीं उलझना। उसने ऐसा नहीं कि अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को आज़ाद छोड़ दिया, उनसे ना उलझाओ, लेकिन उसने कोशिश की कि मसलन हमारे अइम्मा अलैहिस्सलाम या वो शख्सियतें जो डायरेक्ट जिनका रिश्ता है, उसने उनको टच नहीं किया, लेकिन उसके अलावा बुरी तरह जो कलाकामा किया, और हज्जाज ही के बल पर सवात और पायदारी हासिल हुई आले उमैया को।
मरवान को कैसे कामयाबी हासिल हुई ज़ुबैर की हुकूमत के खात्मे में, क्योंकि वो शाम में है, दूर है, और
वो
ये मक्के में है।
मरवान ने इसके लिए हज्जाज को भेजा, हज्जाज ने खुद यानी आके कहा, इजहार किया, ख्वाहिश जाहिर की कि मैंने ख्वाब देखा है ऐसा कि मैं ज़ुबैर के सर को कलम कर रहा हूँ, उसके सीने पर बैठ के उसकी खाल उतार रहा हूँ, मुझे भेज। उसने हज्जाज को भेजा, और हज्जाज ने आके जो पूरा एक यानी ऐसा मुजाहरा किया ताकत का कि जैसा कभी नहीं हुआ था। मक्के में आने के बाद उसने अपनी फ़ौज को अंदर दाखिल करने का हुक्म दिया, आग बरसाई, गंदगी फेंकी, ये सब हुआ। उसके बाद फिर हज्जाज के हाथों हुकूमत ज़ुबैर का तख्ता पलटा।
चंद सवालात को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। अली हैदर साहब ने लाहौर पाकिस्तान से सवाल किया है, और इत्तफाक से सवाल आपसे मरबूत है कि मौलाना नजीबुल हसन साहब, आपने कई जगह गुफ्तगू में खवास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बराए मेहरबानी इस लफ्ज़ की वजाहत कर दें कि ये खवास क्या चीज़ होती है।
खवास उन अफराद को कहते हैं कि जिनका एक ख़ास नुक्ता नज़र होता है और वो एक ख़ास पोजीशन के हामिल होते हैं, एक ख़ास हैसियत के हामिल होते हैं, मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर, कभी कबीले की बुनियाद के ऊपर, कभी माल के ऊपर, कभी फ़िक्री बुनियादों के ऊपर, उनका ताल्लुक़ एक ख़ास हैसियत से होता है। अगर इसको और वाज़ह किया जाए तो एक हदीस है हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिन्होंने फरमाया कि ला तुसलहो अवाम उम्मती इल्ला बिख़वास्सेहा, हमारे उम्मत के आवाम की इस्लाह नहीं हो सकती है मगर ये कि जब तक के ख़ास लोग आगे ना बढ़ें। वकीला मन ख़वास उम्मत या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत के ख़ास लोग कौन हैं? आपने फरमाया ख़वास उम्मती अला अरबा, हमारी उम्मत के ख़ास लोग चार तरह के होते हैं, चार गिरोहों में हैं। अल उमरा वल उलमा, फिर फरमाते हैं अल उलमा अत्तुजार अल उब्बाद, ये चार तरह के गिरोह हैं। तो पूछा गया कीला कई फ़ज़ालिक, ये कैसे ख़ास हैं? तो आपने फरमाया कि अल उमरा रुआतुल खल्क, और उमरा जो हैं हाकिम, हाकिम तबका जो हुकूमत कर रहा है,
जी
दर
जी
हकीकत अपनी रईयत के मुहाफिज हैं। फ़ैदा कान अर्राई ज़ेबन फ़ैका फ़कई फ़युराइल्गनम, कि अगर एक ऐसा शख्स कि जो गोसपंदों की हिफाजत के लिए है,
भेड़ों
मसलन
की
भेड़ों की
हिफाजत के
हिफाजत
लिए
के लिए चरा रहा है, उनको लोगों ने उसको दिया है कि चराने के लिए जाओ, रईयत की मिसाल ऐसे ही दी जाती है, तो कहा कि अगर ये शख्स अगर भेड़िया बन जाए, फ़ैदा कान अर्राई ज़ेबन फ़ैकई फ़युराइल्गनम, तो फिर किस तरह से एक गोसपंद को चराया जा सकता है? फिर
बिल्कुल
फरमाते हैं वलमा अतिब्बा उलकौम फ़ैदा कानत तबीब मरीज़न फ़कैफ़ युदाविल मरीज़, अगर तबीब मरीज़ हो जाए, एक डॉक्टर मरीज़ हो जाए, तो मरीज़ का इलाज कैसे किया जाएगा? फिर
बिल्कुल
फरमाते हैं अल उब्बाद दलीलुल खल्क, परवरदिगार के लिए उसकी राह में लोगों को पहुंचाने के लिए ये एक निशानी है। फरमाते हैं वैदा कानत दलीलु ज़ालन फ़कैफ़ यहदी, अगर खुद जो राह है, रास्ता है, वो भटक जाए, दलील निशानी अगर भटक जाए, तो कैसे मंजिल तक पहुंचा जा सकता है? फरमाते हैं व तुजार ओमना उल खल्क फ़ैदा कानन अमीनो खाइनन फ़मन युतमद अलैह, अगर अमीन जो अमानतदार है वो खाइन हो जाए तो किसके ऊपर एतमाद किया जाएगा? तो ये चार तबके हैं जिनमें उलमा हैं, जिनमें हाकिम तबका है, जिनमें ताजर तबका है, जिनमें इबादत करने वाला तबका है। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हम बयान कर सकते हैं कि ख़ास लोग ये हैं। अब हम देखेंगे आज की मसलन सूरत हाल में इन ख़ास लोगों का जहाँ किरदार अच्छा होता है वहाँ कौम को उरूज मिलता है, वहाँ कौम तरक्की करती है, लेकिन जब ये ख़ास लोग अपने किरदार को अदा नहीं करते हैं तो वहाँ करबला रूनुमा होती है, वहाँ हुसैन शहीद होते हैं। अजीब मंजिल है यहाँ पर कि आप देखें मसलन जनाबे हानी को जब पकड़ा गया है और उनको क़ैद में डाला गया है, तो एक मरहला है, एक ख़ास शख्स है, उसको एक किरदार अदा करना है, नहीं अदा किया। हानी का कबीला है, हानी के पूरे कबीले ने आके घेर लिया, इब्ने ज़ियाद के कस्र, इब्ने ज़ियाद का महल पूरा घिरा हुआ है दारुल इमारा, हानी के लोग फरियाद बुलंद करते हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि हानी कहाँ हैं। हानी के बारे में उनको ये बताया गया है कि कैद कर लिया गया है, हानी को मसलन अजियत दी गई है, परेशान किया गया है, मारा गया है, जुदकूब किया गया है, वो कह रहे हैं हानी को ला के दिखाओ। यहाँ पर एक शख्सियत है ख़ास, शुरह काजी है, इब्ने ज़ियाद ने उसको भेजा के जाके इन लोग से कहो कि हमने हानी को मुलाकात के लिए बुलाया है, गुफ्तगू कर रहे हैं हम हानी से, कोई ऐसी बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आता है, इसके दिल में ये बात है कि मैं ये कह दूँ लोगों से कि हानी को मसलन कैदी बनाया गया है, लेकिन एक बार ग़ुलाम को देखता है कि जो नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ है, डर जाता है, डरने के बाद कहता है कि हानी मसलन, जो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इब्ने ज़ियाद से मुलाकात के लिए आए, गुफ्तगू हो रही है, ये कहता है, ये तमाम लोग इसकी बात पर यकीन कर जाते हैं, चूँकि ख़ास है, वहाँ से चले जाते हैं।
काजी
रहबर इनकलाब इस्लामी अपनी नमाज जुमा के खुतबे में एक यहीं पर आके एक मंजिल है जिसको बयान करते हैं, कहते हैं कि अगर ख़ास लोगों की मंजिल ये होती कि अगर इस ख़ास शख्स ने, जो ख़ास है शुरह की तरह एक खसूसियत का हामिल है, अगर इसने अपने किरदार को अदा किया होता और इसने सही बात बता दी होती तो शायद करबला रूनुमा न होती। चूँकि हानी का कबीला इब्न ज़ियाद के महल को घेर चुका था, घेरने के बाद अगर उन लोग को ये पता चलता कि नहीं, ये इब्ने ज़ियाद से मुज़ाकरा नहीं हो रहा है बल्कि इसने जूद कूब किया है, इब्ने ज़ियाद ने परेशान किया है, उनको सताया है या मारा है, यकीनन ये लोग कब्ज़ा कर लेते। उस वक्त इब्ने ज़ियाद के महल में कोई सिपाही नहीं थे इस तरह के जो मुकाबला कर सकते, इन्होंने पूरे महल को घेरा हुआ था, और ये कब्ज़ा अगर कर लेते तो फिर सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी होती।
बरक्स होते।
लेकिन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि एक ख़ास शख्स ने अपने किरदार को अदा नहीं किया, नतीजा कहाँ तक पहुँचा। तो बहुत सारे एक हल्के की तरह गोया वाबस्ता, एक चैन है उसमें बहुत सारे हल्के हैं, एक जंजीर है जो करबला तक पहुँचाती है, इसमें बहुत सारे अफराद हैं जिनका हाथ है इस मंजिल तक पहुँचाने में। यकीनन अगर ख़ास अफराद अपनी हैसियत को समझते हुए आगे आएँ और उस किरदार को अदा करें जो उनका किरदार है, बसीरत के साथ आगे बढ़ें, तो कभी भी वो मंजिल नहीं आएगी कि जहाँ पर एक धचका पहुँचे और बहुत ऐसा नुकसान उठाना पड़े कि जिसका खमियाजा भुगता न जा सके या खमियाजा अदा न किया जा सके। तो ये रसूल अल्लाह की हदीस में इस चीज़ को बयान किया गया है कि ख़ास लोग में उमरा हैं, हाकिम तबका है, उलमा हैं, ताजर तबका है और इबादत गुजार तबका है। अब हम देखें कि हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज माशरे में ये चार तरह का जो ग्रोह है
किस तरह काम कर रहे हैं,
किस
आया अपने
तरह
फ़राइज़ को अंजाम दे
अंजाम
रहे
दे
हैं
रहे
या
हैं
नहीं
या
दे
नहीं
रहे
दे
हैं।
रहे हैं।
नाज़रीन कराम, ख़वास का काम होता है, ये चार तबके जिनकी गुफ्तगू की गई है, इनका काम है कि अवाम को सही राह पे गामजन करें या अवाम को उसके रास्ते से भटका दें। अगर ख़वास किसी माशरे के, बुजुर्गान किसी माशरे के दुरुस्त कामों को अंजाम देंगे तो वो माशरा तरक्की करेगा, वरना ख़वास की गलतियों का खमियाजा आवाम को और उस माशरे को भुगतना पड़ता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।